नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की पुस्तक है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी, और इसी पुस्तक के एक खास अध्याय नारी को भी परिपूर्ण मनुष्य ही माना जाए, इसकी हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस अध्याय का जो मूल संदेश है, जो दृष्टिकोण है, उसे हम ठीक से समझ पाएं।
बिल्कुल, और यह अध्याय मुझे लगता है आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। ये नारी के स्थान को लेकर ना एक बहुत ही स्पष्ट और संतुलित नजरिया देता है। मतलब न तो उसे कम आंकता है और न ही आप कह सकते हैं अनावश्यक रूप से महिमा मंडित करता है, बल्कि उसे एक पूर्ण मनुष्य के रूप में देखने की बात करता है।
हाँ, ये पूर्ण मनुष्य वाली बात बहुत अहम है। अध्याय शुरू ही इसी विचार से होता है कि भाई नारी को ना वरिष्ठ मानो ना कनिष्ठ, उसे एक परिपूर्ण मनुष्य समझो, जिसे हर इंसान की तरह मतलब पुरुष की तरह ही कर्तव्य निभाने हैं और अधिकार भी पाने हैं। और वंदनीय माता जी इसी को क्या कहती हैं? औचित्य, विवेक और न्याय का निर्णय।
जी, और यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि ये जो वरिष्ठ कनिष्ठ वाला भेद है ना, ये आया कहाँ से?
अच्छा,
वंदनीय माता जी कहती हैं कि ये तब आया जब नारी को सीमाओं में बांधा गया, उसे छोटा समझा गया, या ये माना गया कि उसका काम बस अनुसरण करना है, सेवा करना है।
अच्छा,
हाँ, तो जब ये हुआ, इसी के विरोध में एक प्रतिक्रिया हुई, फिर उसे वरिष्ठ या देवी बताने की बातें भी होने लगी। लेकिन वंदनीय माता जी का तर्क बड़ा सीधा है, अगर उसे दासी ना बनाया जाए तो फिर उसे देवी कहने की भी क्या जरूरत है, बस एक पूर्ण मनुष्य मानना ही काफी है।
ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब एक अति जो है वो दूसरी अति को जन्म देती है, और अध्याय ये भी साफ करता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी खासियत होती है, है ना? जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वभाव है, कुशलता है।
बिल्कुल,
और नारी के संदर्भ में उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो उसकी एक विशिष्टता है, एक जैविक सच्चाई, और इसी वजह से परिवार व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है वो स्वाभाविक रूप से उसके हिस्से ज्यादा आता है।
सही कहा। और यहाँ देखिए, सबसे जरूरी बात यह है जिस पर वंदनीय माता जी बहुत जोर देती हैं, कि ये जो अलग भूमिका है ना, इसे किसी को बड़ा या छोटा मानने का आधार नहीं बनाना चाहिए। जैसे पुरुष बाहर कमा रहा है, स्त्री घर की व्यवस्था संभाल रही है, तो ये दोनों काम एक दूसरे के पूरक हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री,
और दोनों का महत्व बराबर है।
बराबर है।
हाँ, अगर नारी को छोटा कहकर उसका तिरस्कार न किया जाए तो उसे बड़ा बताकर बहलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
वंदनीय माताजी ने इसकी एक शब्द भी इस्तेमाल किया है, बड़प्पन की चापलूसी।
बड़प्पन की चापलूसी, हाँ, ये बहुत सटीक है।
मतलब तारीफ करके असल मुद्दे से ध्यान हटा देना।
हाँ,
तो वंदनीय माताजी ने एक उपमा भी दी है, गाड़ी के दो पहियों की तरह या दो हाथ और दो पैरों की तरह नर और नारी को समानता के आधार पर एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए।
जी बिल्कुल, ये उपमा बहुत सार्थक है। गाड़ी के दो पहिए हों या शरीर के दो हाथ दो पैर, दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, और गाड़ी या शरीर ठीक से चल नहीं सकता।
तो सार यही है कि आपसी सम्मान हो, सहयोग हो और अवसर बराबर मिले।
तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब अगर हम नारी को पुरुष की ही तरह एक पूर्ण मनुष्य मान लें, तो क्या ये जो तथाकथित नारी समस्या है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी?
वंदनीय माता जी का तो यही मानना है, उनका विश्लेषण यही कहता है। ये पूरी उलझन ही इसलिए पैदा हुई है क्योंकि उसे अपूर्ण या भिन्न माना गया, उसे या तो कमजोर मान लिया या फिर देवी बनाकर जिम्मेदारियों से परे कर दिया। अगर उसे बस मनुष्य मान लिया जाए, उसकी मानवीय गरिमा स्वीकार कर ली जाए, तो ये समस्याएं काफी हद तक सुलझ सकती हैं।
तो इस अध्याय का, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि नारी को उसके मानवीय स्वरूप में, उसकी पूर्णता के साथ स्वीकार किया जाए, ना उसे कमतर आका जाए, न ही देवी बनाकर व्यवहारिक जिम्मेदारियों और अधिकारों से अलग कर दिया जाए। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं इसी विचार से जुड़ा हुआ।
हाँ, जरूर।
वंदनीय माता जी ने जो ये गाड़ी के दो पहियों या पूरकता का सिद्धांत दिया है, आज के इस बदलते सामाजिक और पारिवारिक जीवन में हम इसे और ज्यादा सार्थक रूप से कैसे लागू कर सकते हैं? क्या ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है? और अगर है, तो इसे असल जीवन में उतारने के लिए हमें और क्या करना होगा?
ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर सोचना जरूरी है।